यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 1 जनवरी 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। यूएन प्रमुख का संदेश, 2020 में मुसीबतों और तकलीफों के बाद वर्ष 2021 को बनाना होगा घाव भरने और उम्मीदों का एक मौका। WHO ने आपदा प्रयोग के लिए COVID-19 की वैक्सीन को दी हरी झंडी। उधर विशेषज्ञों ने कहा, वैक्सीनों से इसके पूरी तरह खात्मे की गारंटी नहीं, एहतियात के साथ जीना होगा। सूडान के दारफूर क्षेत्र में सहायता मिशन हुआ पूरा और अमेरिका से सीरिया के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंध हटाने की पुकार। याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। दुनिया जब इम्तिहानों, मुसीबतों और आंसुओं से भरे वर्ष 2020 के बाद एक नए वर्ष 2021 में दाखिल हो रही है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नववर्ष के लिए उम्मीदों से भरा संदेश जारी किया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि नया वर्ष पिछले साल द्वारा दिए गए जख्मों को भरने का मौका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरने वाला वर्ष एक ऐसा दौर रहा है जब COVID-19 महामारी ने हर एक इंसान के जीवन को प्रभावित किया है।
So many loved ones have been lost and the pandemic rages on, creating new waves of sickness and death. Poverty, inequality and hunger are rising. Jobs are disappearing and debts are mounting.
महासचिव कह रहे थे कि बहुत सारे प्रियजनों के जीवन समाप्त हो गए हैं और महामारी का विनाश अब भी जारी है, जिसने बीमारी और मृत्यु की नई लहरें उत्पन्न कर दी हैं। निर्धनता, असमानता और भुखमरी बढ़ रही हैं, रोजगार व कामकाज गायब हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है और बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है, घरों में हिंसा व असुरक्षा बढ़ रही है। इन सब के बावजूद एक नव वर्ष हमारे सामने है और अगर हम सभी एकता व एकजुटता के साथ मिलकर काम करें तो आशा की किरणें दुनिया भर में पहुंच सकती हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि लगातार महसूस की जाने वाली तकलीफ और दुख की इस पृष्ठभूमि में भी लोग अपने पड़ोसियों और अजनबियों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अग्रिम मोर्चों पर काम करने वाले कर्मी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वैज्ञानिक गण रिकॉर्ड कम समय में वैक्सीन विकसित कर रहे हैं और बहुत से देश जलवायु आपदा को रोकने के लिए नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त कर रहे हैं। महासचिव ने कहा कि एक बेहद कठिन वर्ष का यही पैगाम और सबक है। उधर यूएन महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोजकिन ने भी अपने नववर्ष संदेश में दुनिया भर के हर एक इंसान से कोरोना वायरस महामारी का खात्मा करने और एक समावेशी व टिकाऊ भविष्य बनाने की खातिर एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विकासशील दुनिया में COVID-19 की वैक्सीन की उपलब्धता में तेजी लाने के उद्देश्य से 31 दिसंबर को फाइजर कंपनी की वैक्सीन बायोएनटेक को आपात स्थिति में प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी है। संगठन ने दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया, जिन्होंने यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की टीम के साथ मिलकर फाइजर की वैक्सीन के विवरण और बारीकियों की जांच पड़ताल व समीक्षा की। इन तमाम विशेषज्ञों और यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की टीम ने गुरुवार को पाया कि ये वैक्सीन सुरक्षा और फायदों के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों और कसौटी पर खरी उतरती है। इस वैक्सीन के संभावित जोखिमों की तुलना में इसके लाभ कहीं ज्यादा हैं। इस वैक्सीन को WHO द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अब देशों के लिए अपने यहाँ नियामक मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के दरवाजे खुल जाएंगे और वैक्सीन आयात करने व जरूरतमंदों को दिए जाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जा सकेगी। उधर WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को वर्ष 2020 की अपनी अंतिम प्रेस वार्ता में आगाह करते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस बहुत बड़ा वायरस हो, बल्कि दुनिया भर में एक अन्य और कहीं ज्यादा गंभीर महामारी के फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनों के जरिए इस महामारी के पूरी तरह सफाई की गारंटी नहीं दी जा सकती। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
कोविड 19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वैन कार्खोव ने ध्यान दिलाया कि जिन देशों ने महामारी का मुकाबला प्रभावशाली और सफलतापूर्वक किया है, ज़रूरी नहीं कि वो उच्च आय वाले देश थे, बल्कि उनमें ऐसे देश ज़्यादा थे जिन्होंने अन्य संक्रामक बीमारियों का भी असरदार तरीके से सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने दुखद घटनाओं की गहरी स्मृतियों का सहारा लेकर अपनी व्यवस्थाओं को त्वरित गति से काम करने और वायरस का मुकाबला व्यापक और एकजुट रूप में करने के लिए कदम उठाए। डॉक्टर वैन कार्खोव और डॉक्टर माइक रायन ने संयुक्त रूप से विश्व का आह्वान किया है कि अगले किसी स्वास्थ्य संकट का सामना करने के लिए बेहतर तैयारी मौजूद रहे, जिसमें व्यापक रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपना काम कर सकें और नागरिक व्यापक रूप से जानकारी रखते हुए खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस ने पत्रकारों को बताया कि यूएन स्वास्थ्य एजेंसी वायरस के बारे में हर दिन नई बातें सीख रही है, जिनमें इस वायरस के नए रूपों के फैलाव, लोगों को बीमार बनाने या मौजूदा परीक्षण, इलाज सुविधाओं और वैक्सीनों पर संभावित असर छोड़ने की क्षमता के बारे में जानकारी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने हालांकि ये भी आगाह किया कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जल्दबाजी हो सकती है जिसमें कोविड 19 को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। इस प्रेस वार्ता में अतिथि वक्ता प्रोफेसर डेविड हेमेन ने कहा कि अब हमारे पास ऐसे हुनर और उपकरण हैं जिनके माध्यम से जीवन बचाए जा सकते हैं और हम कोविड 19 के रहते भी जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर माइक रायन ने सहमति व्यक्त करने के अंदाज में कहा कि कोविड 19 के वैश्विक आबादी में एक महामारी बनकर रह जाने की संभावना है। वैक्सीनों और टीकाकरण के सहारे ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि संक्रामक बीमारियों का बिल्कुल उन्मूलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज इस महामारी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य का पीछा करने के बजाय पूरी ताकत व क्षमता के साथ जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करके हालात बेहतर बना सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष ने सूडान के दारफूर क्षेत्र में इन दोनों संगठनों का संयुक्त सहायता मिशन गुरुवार 31 दिसंबर को खत्म हो जाने के बाद भी वहां शांति और सामान्य स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान जारी रखने का आश्वासन दोहराया है। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फाकी महमत ने गुरुवार को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में सूडान में सभी पक्षों से ये आग्रह भी किया गया है कि वो दारफूर क्षेत्र में अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सहायता मिशन UNAMID के अभियान 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाने के बाद भी अगले 6 महीनों के दौरान इसकी तमाम तरह की मौजूदगी को समेटने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित कराते रहेंगे। वक्तव्य में अध्यक्ष और महासचिव ने अपना ये संकल्प दोहराया है कि सूडान में शांति निर्माण प्रयासों में हासिल की गई प्रगति और वहां के लोगों व सरकार की सहायता करना जारी रखा जाएगा। ध्यान रहे कि लगभग 2 वर्ष पहले सूडान में क्रांति हुई थी, जिसके बाद बहुत लंबे समय से सत्तासीन तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर को अप्रैल 2019 में सत्ता से हटा दिया गया था। अक्टूबर 2020 में सूडान सरकार और दारफूर इलाके में सक्रिय 2 सशस्त्र समूहों के बीच महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ था। यूएन सुरक्षा परिषद ने सूडान के दारफूर क्षेत्र में सहायता मिशन की स्थापना जुलाई 2007 में की थी। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ एलेना दुहान ने अमेरिका से सीरिया पर लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया है, क्योंकि इन प्रतिबंधों के कारण युद्धग्रस्त सीरिया में तबाह हुए नागरिक बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
एलेना दोहान एक तरफा दमनात्मक उपायों के मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभावों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कायसर सीरिया सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पहले से ही बहुत खतरनाक बन चुकी मानवीय स्थिति के और ज्यादा बदतर होने का खतरा है, खासतौर पर कोविड 19 महामारी के समय में। ऐसे हालात में सीरियाई लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन के लिए और भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कायसर एक्ट में सीरिया के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध अभी तक के सबसे ज्यादा कड़े हैं। इन प्रतिबंधों के तहत सीरिया में पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता करने वाली किसी भी विदेशी एजेंसी या व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है। इस दायरे में पुनर्निर्माण कंपनियों में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियां और मानवीय सहायता संगठनों के कर्मचारी भी हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सीरियाई केंद्रीय बैंक को धन की हेराफेरी संबंधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह के दायरे में रख दिया है। इससे सीरिया में विदेशी सहायता और मानवीय सहायता सामग्री के आयात को संभालने में स्पष्ट रूप से अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। विशेष रिपोर्टर एलेना दोहान ने कहा कि कायसर एक्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी गंभीर चिंताओं को जन्म देता है क्योंकि इसमें असीम कार्यकारी और व्यापक दायरे वाली आपदा शक्तियां निहित हैं और इनके बहुत सख्ती से लागू किए जाने का बहुत अधिक जोखिम है। उन्होंने कहा कि जो बात मुझे सबसे ज़्यादा आगाह करती है वो है कि कायसर एक्ट मानवाधिकारों के प्रति बहुत सख्त है, जिनमें सीरियाई लोगों के आवास, स्वास्थ्य और रहन सहन और विकास के उपयुक्त मानक के अधिकार शामिल हैं। विशेष रिपोर्टर ने कहा कि अमेरिकी सरकार को सीरिया में अस्पतालों के पुनर्निर्माण के रास्ते में बाधाएं नहीं खड़ी करनी चाहिए क्योंकि चिकित्सा देखभाल सुविधाओं का अभाव पूरी आबादी के जीवन के अधिकार को ही खतरे में डालता है।
संयुक्त राष्ट्र के 5 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक निजी सुरक्षा कंपनी ब्लैक वाटर के 4 निजी सुरक्षा गार्डों को आम माफी दिए जाने के फैसले की निंदा की है। इन सुरक्षा गार्डों को इराक की राजधानी बगदाद में वर्ष 2007 में एक चौराहे पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर अनेक आम निहत्थे लोगों की हत्याओं के आरोप में वर्ष 2015 में युद्धापराधों का दोषी करार दिया गया था। इन गार्डों द्वारा बगदाद के निसौर चौक पर गोलियां चलाए जाने से 14 आम निहत्थे लोगों की मौत हो गई थी और 17 अन्य घायल हुए थे। निजी हथियारबंद लड़ाकों के इस्तेमाल मुद्दे पर मानवाधिकार विशेषज्ञों के समूह की अध्यक्षा जेलेना अपारेक ने कहा है कि ब्लैक वाटर के गार्डों को आम माफी देना न्याय का और निसौर चौक हत्याकांड के पीड़ितों और उनके परिवारों का अपमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत युद्धापराधियों की जवाबदेही निर्धारित करना देशों की जिम्मेदारी है, यहां तक कि वो अगर निजी सुरक्षा गार्डों या ठेकेदारों के रूप में भी काम करें तब भी। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इन 4 ब्लैक वाटर सुरक्षा गार्डों पर बाकायदा कानून के तहत न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था और उनके अपराधों के लिए उन्हें दोषी पाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 दिसंबर को इन 4 गार्डों को आम माफी दे दी थी। जेलेना अपारेक ने जोर देकर कहा कि इस तरह की माफी दिए जाने से अंतर्राष्ट्रीय कानून में अमेरिका की जिम्मेदारी का उल्लंघन होता है और उससे भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चुनौती है जो वर्ष 2020 तो क्या वर्ष 2021 में और उससे भी आगे मानवता के लिए बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर आने वाले वर्ष और उससे भी आगे वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया है। वर्ष 2015 में हुआ पेरिस जलवायु समझौता इस चुनौती का सामना करने के लिए ठोस उपाय प्रस्तुत करता है। पेरिस जलवायु समझौते के 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिसंबर में एक विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें अब तक हुई प्रगति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के भारत में एक प्रोग्राम ऑफिसर करण मंगोत्रा के साथ कुछ दिन पहले एक खास बातचीत की और यही जानना चाहा कि अब तक पेरिस जलवायु समझौते की क्या उपलब्धियां और चुनौतियां रही हैं और भविष्य के लिए क्या रास्ता नजर आता है।
सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो पेरिस समझौते की रही है वो ये थी कि उन्होंने हर देश की कैपेसिटी के हिसाब से एक बॉटम अप एक्सरसाइज के थ्रू उनसे नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन मांगकर एक समझौते पर वो ला पाए 5 साल पहले, जो कि उनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है। उसके कारण देशों ने अपने अंदर झांक कर देखा कि वो क्या कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के क्षेत्र में और जहां पर वो क्लाइमेट को बेनिफिट डालकर अपना कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व के सहयोग के साथ कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। चुनौती ये रही है कि जो अभी हाल ही में जो यूनेप की एमिशन गैप रिपोर्ट आई है उससे ये पता चलता है कि 197 देशों ने मिलकर ये समझौता किया और एक एक्सरसाइज के थ्रू नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन दिए, वो अभी भी हमारे पूरे विश्व के तापमान को 1.5 से 2 डिग्री से कम रखने में पूरे नहीं होंगे। एक और उपलब्धि पेरिस एग्रीमेंट की ये रही है कि उनके प्रावधानों के कारण हर कुछ वर्षों में हर देश के पास एक मौका है कि वो अपने टारगेट बढ़ा सकें और अपने देश के अंदर और एनहेंस्ड एक्शन ले सकें।
तो क्या लगता है भारत में पिछले कुछ वर्षों में जलवायु को लेकर जो सकारात्मक कदम उठाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं इस पेरिस समझौते का हाथ रहा है?
जी बिल्कुल, पर पेरिस समझौते से पहले से ही भारत क्लाइमेट चेंज को बहुत ही कीन दृष्टि से देखता है और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो 2007 से है, तो क्लाइमेट तो हमारे डेवलपमेंट में, भारत के पॉलिसीज में और इंडस्ट्री एक्शन में जो उद्योग हैं उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है। पर पेरिस के आने से और जो हमारा NDC हमने दिया है उससे हम देख रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी और सोलर एनर्जी में हमारा एम्फेसिस बहुत बढ़ गया है। अब हमारे प्राइसेस भी बहुत कम हो गए हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए कि पिछले 4 से 5 सालों पर ऑलमोस्ट हर लेवल में भारत में अब LED का प्रयोग है। ये सब इंटरनल एक्शन है और ये जो ग्लोबल पेरिस का ये समझौता है इससे डोमेस्टिक एक्शन नज होता है।
विकासशील देशों में लो कॉस्ट फाइनेंस और तकनीकी बदलाव लाना एक अहम चुनौती रही है, क्या पेरिस समझौते से इसका समाधान संभव हो पाएगा?
ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और पेरिस समझौते के अंदर दो मैकेनिज्म है, दो प्रावधान है, एक फाइनेंस का मैकेनिज्म है और एक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है। आई थिंक कहीं ना कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन दो प्रावधानों को और स्ट्रेंदन करने की जरूरत है और इन्हीं प्रावधानों से और बाकी देशों के एकजुट होने से ये आगे बढ़ाया जा सकता है। लो कॉस्ट फाइनेंस, जो विकासशील देश हैं उनके लिए लो कॉस्ट फाइनेंस बिजनेस मॉडल, ग्रांट्स और ये गारंटी, ऐसे टाइप के मॉडल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपने यहाँ पर एक्शन लेने के लिए और ये देखने के लिए कि क्लाइमेट एक्शन डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज में कैसे एम्बेड हो सकता है।
कोविड महामारी खत्म होने के बाद जलवायु कार्रवाई को लेकर आगे भविष्य कैसा नजर आ रहा है?
यूनेप की जो एमिशन गैप रिपोर्ट आई है और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिपोर्ट मैंने पहले देखी है, कोविड जो कि बहुत ही डेंजरस महामारी जिसके थ्रू ये विश्व गुजर रहा है उसके कारण और ये लॉकडाउन्स जो हुए कई देशों में उनके कारण थोड़ा सा इमीडिएट एमिशंस पर डिप आया है, पर जैसे जैसे आगे हम नॉर्मलसी की ओर जाएंगे हम ये देखेंगे कि एमिशंस वापस राइज कर रहे हैं। उसमें अच्छी बात ये है कि आस्ते आस्ते सारे देश अपने रिकवरी पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, तो आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हमारा कॉन्शियस एफर्ट ये रहना चाहिए कि हर रिकवरी के अंदर हम ग्रीन और क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे एम्बेड कर सकें। ये भविष्य की ओर पे अगर ये चलेंगे तो हम 1.5 से 2 डिग्री के नीचे अपना तापमान विश्व स्तर पर रख पाएंगे।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। और चलते चलते ये संक्षिप्त खबरें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने गुरुवार को वर्ष 2021 के लिए इस विश्व संगठन के $3.23 अरब के नियमित बजट को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक और बजटीय मामलों के लिए जिम्मेदार यूएन महासभा की 5वीं समिति ने इस बजट पर विचार विमर्श के बाद गुरुवार दोपहर बाद इसे स्वीकृत किया। उसके बाद यूएन महासभा के एक वृहद सत्र में इस बजट को भी पारित कर दिया गया। और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य शुक्रवार 1 जनवरी को अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। ये 5 सदस्य हैं भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। जनवरी महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ट्यूनिशिया के पास रहेगी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। अपना और अपने आसपास सभी का खूब ख्याल रखिएगा।